जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 16 ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकसाय वीरायन्ते उवसामये पणन्युं कसाय उवसामणं वोच्चम्।
यह श्री वीरसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वीं पुस्तक में चारित्रमुख की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 96 पर आ गए। 96 उपशम श्रेणी उतरने वाले की बात चल रही है। यहाँ पर हमने देखा क्रम से एक एक जो उपशमित हुए थे वो सब अनुपशमित हो जाते हैं। अब यहाँ अपूर्वकरण के बाद अधः प्रवृत्त में प्रवेश कर चुका ऐसे जीव की बात यहाँ चल रही है। अब तक क्या था तो गलितावशेष गुणश्रेणी आयाम था, यानी जब जिस कषाय से चढ़ा था उस कषाय का जब उदय होने लगा तब वहाँ जो आयाम बना गुणश्रेणी का, जो ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों के समान आयाम वाला है, अब वहां से लेकर ये मोहनी का जो गुणश्रेणी आयाम है, गुणश्रेणी निक्षेप जिसको कहेंगे, वो गलित शेष हो जाता है। एक एक निषेक उसमें से गल जाएगा और बचे हुए निषेकों में वो गुणित प्रमाण से द्रव्य दिया जाएगा, गुणश्रेणी वहां होगी। अब जब अध प्रवृत्त में आया है, ये अपूर्वकरण के अंत समय तक गलित शेष गुणश्रेणी आयाम चल रहा था, जब अध प्रवृत्त में प्रवेश कर किया उसने तो पहले जो गुणश्रेणी निक्षेप बनाया था ना उसने अन्य के समान अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण प्लस थोड़ा, अब कहते हैं उससे भी संख्या गुणा बढ़ा, यहाँ नया गुणश्रेणी का आयाम बनेगा अध प्रवृत्त में प्रवेश करने पर। ये गुणश्रेणी का प्रमाण कम ज्यादा होता रहता है परिणामों के अनुसार, जहाँ विशुद्धि ज्यादा वहाँ आयाम छोटा। अभी उल्टी तरफ आ रहे हैं ना, विशुद्धि अभी मंद हो रही है तो यहाँ अध प्रवृत्तकरण में बड़ा आयाम हो जाएगा। अब हम 96 पृष्ठ पर सूत्र पढ़ेंगे, जो पढ़म समय अधा पवत्त करणे निखे वो सो अंतो मोत्यो तत्यो चेव। अधा प्रवृत्त करण के प्रथम समय में जो निक्षेप होता है, यह है तो सातवां गुणस्थान परंतु अभी वो अपूर्व करण से उतरा है तो उसका अधक करण चल रहा है, तो उसके प्रथम समय में जो निक्षेप होता है, यानी यहाँ जो गुणश्रेणी का आयाम बनाया उसने, तो कहते वह अंतर्मूर्त प्रमाण होकर उतना ही रहता है। उतना ही रहता है का अर्थ क्या है? अवस्थित रहता है। चल रहे अंतर्मूर्त काल तक यह नियम से अंतर्मूर्त आयाम वाला होकर अवस्थित ही रहता है, क्योंकि वहां वृद्धि और हानि का कारण नहीं पाया जाता। किसकी वृद्धि हानि? आयम की। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु प्रदेश पुंज की अपेक्षा नियम से उत्तरोत्तर घटकर कम होता जाता है। क्योंकि परिणामों के कारण अपकर्षित होने वाले जो प्रदेश पुंज है उसका परिणाम उसका जो प्रमाण है, जहाँ विशुद्धि बढ़ेगी वहाँ अपकर्षित प्रदेश पुंज भी बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उत्तरोत्तर प्रदेश पुंज घटता चला जाएगा, क्योंकि अनंत गुणहानि रूप से घटने वाले परिणामों के होते हुए अब भी यहाँ भले वो सातवें गुणस्थान में है फिर भी अधप्रवृत्तकरण चल रहा है। चढ़ते समय अनंत गुणी विशुद्धि प्रति समय बढ़ती गई है, अब उतरते समय अनंत गुणा हानि प्रति समय होगी, विशुद्धि की अनंत गुणा हानि। इसलिए यहाँ प्रदेश पुंज उत्तरोत्तर घटता चला जाता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल की मर्यादा पूर्वक इसका कथन करके, यानी अधप्रवृत्तकरण है वो अंतर्मूर्त प्रमाण वाला है, तो तब तक ऐसी बातें होती रहेगी। अब उससे आगे गुणश्रेणी निक्षेप अवस्थित आयाम रूप विकल्प से होता है, इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। तेनम परम सिया वड्डदी सिया हायदी सिया अवट्ठायदी, इसके पश्चात की बात है। अभी तक तो अध प्रवृत्त वाला था, अब अध प्रवृत्त समाप्त होने के पश्चात यहाँ लिखते हैं, देखो इसका अर्थ। उससे आगे गुणश्रेणी निक्षेप आयाम कदाचित बढ़ता है कदाचित घटता है कदाचित अवस्थित रहता है, आयाम की बात कर दिया। अध गुणश्रेणी का आयाम अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित आयाम रूप, यानी वो तब तक तो फिक्स है, गुणश्रेणी निक्षेप करके उससे आगे यानी उसके पश्चात की बात है। गुणश्रेणी निक्षेप का आयाम वृद्धि हानि और अवस्थान रूप से परिणमता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, अभी इसी का भावार्थ कह रहे हैं। स्वस्थान संयत होकर, अभी तक तो वो अधप्रवृत्त संयत था, अधप्रवृत्त करण वाला संयत था। स्वस्थान संयत होकर प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानों में परिवर्तन करते हुए, अब ये छठा सातवां चलेगा, अवस्थित आयाम वाले गुणश्रेणी निक्षेप को ही करता है, यानी उसमें तो अवस्थित आयाम रहता है। नहीं, वहां तो उतनी रही, हाँ वहां पर भी उतनी रही गुणश्रेणी, उतनी रही कहते। बाद में संयमासंयम को प्राप्त होता हुआ संख्यात गुण वृद्धि रूप वृद्धि करके गुणश्रेणी निक्षेप का निक्षेपण करता है। यदि वो पांचवें गुणस्थान में चला जावे तो की बात है, जब तक छठे सातवें में था तब तक गुणश्रेणी आयाम अवस्थित था, अब यदि पांचवें में जाता है तो गुणश्रेणी आयाम संख्यात गुणा वृद्धि हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगा। नीचे न गिरकर फिर भी आगमानुसार उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है तो, आगमानुसार जो कुछ विधि हो बीच में आवश्यक है फिर दोबारा द्वितीय उपशम वगैरह करेगा, पहले के गुणश्रेणी शीर्ष से नीचे संख्यात गुणहानि रूप से घटाकर यह जीव गुणश्रेणी निक्षेप को करता है। अभी जो अधप्रवृत्त में गुणश्रेणी थी उसके संख्यात वे भाग प्रमाण नई गुणश्रेणी वहां बनेगी, क्योंकि जहां परिणाम अनंत गुणे बढ़ते हैं वहां तो गुणश्रेणी छोटी होती है। यानी जब तक यदि वो स्वस्थान संयत रहा छठे सातवें में तो गुणश्रेणी उसकी अवस्थित है, यदि पांचवें में जाता है तो गुणश्रेणी संख्यात गुना बढ़ती है, यदि दोबारा श्रेणी चढ़ता है तो संख्यात्वे भाग प्रमाण घट जाती है। यह सब
स्वस्थान में
यदि चढ़ने वाला है तो मात्र स्वस्थान में रहता है तो उसका निक्षेप वही रहता है अवस्थित रहता है।
अधप्रवृत्त में जो गुणश्रेणी निक्षेप होता था उससे ये स्वस्थान में बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कितना ही रहेगा
उतना ही बताया उन्होंने, भावार्थ में तो ऐसा ही खोला है उन्होंने।
हाँ
हाँ, परंतु वो संयमा से हम चढ़ने वाला तब उसमें हानि वृद्धि होती है। हाँ बाद में वो प्रदेश पुंज में बुद्धि हानि होगी। स्वस्थान हो गया, अध प्रवृत्त समाप्त होते ही स्वस्थान शुरू हुआ, गुण श्रेणी तो उतनी ही रहेगी उसकी। चढ़ते समय तो विसंजना की, उतरते समय तो संयोजना करने का कोई कार्य नहीं है, मिथ्या तो गए बिना तो होगी नहीं वो। हाँ किसकी, उसका काल, क्योंकि चढ़ते समय पहले द्वितीय उपशम किया था, फिर हजारों बार छठी सातवें किया था, फिर बाद में अध प्रवृत्तकरण हुआ था। अब जो वो तो द्वितीय उपशम करने का तो कोई कार्य ही नहीं है पर। हाँ द्वितीय उपशम में से वेदक हो सकता है पर उसका काल समाप्त होने का, परंतु अभी द्वितीय उपशम का काल चल रहा है। यानी द्वितीय उपशम करने के लिए अन्य तीन करण किए थे, अभी वैसे तो कोई यहाँ बात है ही नहीं है।
पहले
नहीं हुआ,
हुआ।
स्वस्थान होगा, संयता संयत में भी जा सकता है, असंयत भी हो सकता है। द्वितीय उपशम का काल ज्यादा है, बड़ा है, सासादन में भी जा सकता है, पांचवें में से चौथे में जा सकता है, चौथे में जाकर फिर दोबारा पांचवें में आकर फिर संयत हो सकता है। यानी इतना है उसका बड़ा काल।
लेकिन जो स्वस्थान से ऊपर चढ़ने वाला अपन बता रहे थे, उसका काल समाप्त हो जाना चाहिए।
वो दोबारा करेगा,
करेगा।
यानी हाँ हाँ, तो उतने काल रुकना पड़ेगा उसको। वो जो कोई यथायोग्य अंतर्मूर्त है, हाँ, दोबारा द्वितीय उपशम करेगा। ऐसा नहीं एक बार द्वितीय उपशम करके दो श्रेणी नहीं चली जाती। हाँ गुण श्रेणी के तो उतने की उतनी
रहेगी। हाँ मेरे को इतना लगा थोड़ा बढ़ता होगा
नहीं, दोपहरा चढ़ता है तो बढ़ेगा, तो घटेगा घटेगा, और पांचवे में आएगा तो बढ़ेगा
बढ़ेगा।
देखो ना छठे और सातवें में भी गुण श्रेणी में चेंज नहीं होता
है,
भले वो परिणामों में उसमें प्रदेश पुंज में डिफरेंस पड़ेगा। यह सब गुण श्रेणी निक्षेप के आयाम की अपेक्षा कहा, यानी आयाम कब बढ़ता कम होता है उसकी बात की। नीचे के गुण स्थानों में आएगा पांचवे में तो आयाम बढ़ेगा, फिर दोबारा श्रेणी चढ़ेगा तो आयाम घटेगा। प्रदेश पुंज की अपेक्षा तो वृद्धि हानि और अवस्थान के विषय विभाग की जानकर योजना करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक एकांत से घटाकर उसके बाद स्वस्थान संयत रूप से विद्यमान हुए जीव के अंतर्मूर्त काल तक एकांत से घटाकर इसको क्या कहेंगे, अध प्रवृत्त संयत है वो,
अभी स्वस्थान है।
उसके बाद स्वस्थान संयत रूप से विद्यमान हुए जीव के, अब ये स्वस्थान संयत है, संकलेश और विशुद्धि के कारण वृद्धि हानि और अवस्थान होने के प्रति कोई निषेध नहीं है। यानी उसका प्रदेश पुंज जो आकर्षित होता है उसमें वेरिएशन होते रहेंगे, जैसे परिणाम पलटेंगे वैसे वो, तो प्रति समय में भी उसमें वृद्धि हानि अवस्थान कुछ भी हो सकता है। देखो अध प्रवृत्त संयत ने अभी अपूर्वकरण से उतर कर अध प्रवृत्त में आ गया, उसका अंतर्मूर्त काल है। जैसे चढ़ने में अध प्रवृत्त में उसने क्या किया था, वो अनुपृष्टि रचना देखी थी हमने, और फिर अनंत गुणी विशुद्धि 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 बढ़ते चला गया था, उसमें बहुत सारे जो कुछ चार बातें हुई थी। अभी उतरने वाला अध प्रवृत्तकरण में पहले आएगा, उसकी विशुद्धि अनंत गुणा घटती चली जाएगी अंतर्मूर्त तक, उसको एकांत से घटता हुआ कहा। तो वहां जो गुण श्रेणी बनाई है उसमें प्रदेश पुंज घटते चले जाएंगे, गुण श्रेणी का आयाम उतना का उतना रहेगा। उसके बाद स्वस्थान सातवें में आ गए वो, अभी छठा सातवां चलता रहेगा उसका, गुण श्रेणी उतनी की उतनी रहेगी, उसमें जो प्रदेश पुंज दिया जाएगा उसमें वृद्धि हानि अवस्थान हो सकता है। अभी वो संयम से भ्रष्ट होकर यदि संयमा संयमी हो जाता है तो गुण श्रेणी संख्यात गुना बड़ी हो जाती है। हाँ वो सातिशय ही है अभी, परंतु सातिशय वो स्वस्थान अप्रमत्त, पर ये उतरने वाला सातिशय कहना पड़ेगा क्योंकि चढ़ने वाला सातिशय हर समय अनंत गुना बढ़ता है।
सातिशय हम किसको बोलते हैं? हमने आगे इससे देखा था ना कि जो श्रेणी के सम्मुख हो रहा है उसको साथी, अभी ये तो श्रेणी से गिरा है,
गिरा है फिर भी रेगुलर स्वस्थान में नहीं आया है, उसको उसको नाम ही दिया ना अधप्रवृत्त संयत। सातिशय जैसा है ना उसको
चार नाम हो गए, एक तो जब संयम लब्धि प्राप्त किया तब एकांत अनुवृत्ति कहा और फिर उसको स्वस्थान बनाया, जब अपन पहली बार आए थे साथ में संयम लब्धि प्राप्त की। अब ये यहाँ पर स्वस्थान है,
एकांत अनुवृत्ति भी स्वस्थान वाला ही है।
हाँ लेकिन घटा दे रहे एकांत अनुवृत्ति और स्वस्थान, पहले एकांत अनुवृत्ति फिर स्वस्थान और फिर जब चढ़ा तो सातिशय बोला, क्योंकि वो अतिशय का काम करने वाला चढ़ने वाला है। जब गिरा उसको अदर प्रवृत्ति सहित कहा, उस समय उसको
सातिशय हमें भी वही कहना,
जब गिरा है तो खुद अतिशय का काम करने वाला है, वाला है।
गिरने वाला इसलिए आधा प्रवृत्त
है। नाम कुछ भी करो वो स्पेस जो है मतलब आप टाइम है उसकी, तो पहले तो सातिशय वाली होगी बाद में स्वस्थान होगी,
यानी इसको आधा प्रवृत्त यानी गिरा हुआ है अभी है ऐसा।
उसमें हमारे कोई झगड़ा नहीं है, कहाँ पर आए हैं अधा प्रवृत्त क्रम में कौन सी स्थिति में है, यहाँ चढ़ने वाले की जो सातिशय वाली जो स्थिति है, जो चढ़ते में जो चीज थी चढ़ते वाले का जो स्वस्थान बांटना है तो वही चीजें देते हैं। अब आप बराबर है रहा है लेकिन तो ये पूछना था अदा प्रवर्त हो रहा है ना नीचे
नीचे की ओर जा रहे हैं
इसलिए अदा प्रवर्त,
इसीलिए मैंने बोला
चढ़ते समय उसको आदि प्रवृत्तकरण क्यों कहा,
नहीं हुआ
चढ़ते समय
जो ऊपर नीचे कर रहा था ना
वो अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा उसको कहा था,
अन्य अन्य जीवों में
नाना जीवन की अपेक्षा अधा प्रवृत्त नाम क्यों पड़ा,
परिणामों की
एक की अपेक्षा तो वहाँ भी वो
एक की अपेक्षा एकांत वृद्धि है वहाँ पर भी। एकांत से वृद्धि है एकांत से हानि है इसलिए अधा प्रवृत्त कहा यहाँ पर।
यहाँ पे जो गुण संक्रमण आगे हमने देखा था, अभी क्या संक्रमण अभी कैसे होगा जो हमने जो आगे देखा
चेंज होगा हा? आगे है ना अभी सूत्र, अभी सब जानोगे क्या आगे क्या पढ़ेंगे इसे?
अच्छा तो प्रवृत्ति हाँ,
अभी आएगी बात है कि इसमें क्या क्या विशेषता होती वो सभी बातें आएगी। श्रेणी में जो कोई बातें हो रही थी उसमें से यहाँ क्या क्या शुरू होगा क्या क्या बंद होगा वो सब बातें चलेगी। अभी अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे, पढ़म समय अधा पवत्त करणे, अभी अधा प्रवृत्त का प्रथम समय लिया, फिर अभी स्वस्थान की बात नहीं हो रही है। गुण संकमो वोच्छिन्नो, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। सौव कम्माणम अधा पवत्त संकमो जादो, ये अधा प्रवृत्त करण नहीं अधा प्रवृत्त संक्रमण की बात चल रही है। हाँ नवरी जैसिम विज्ञाद संगमो अथी तेसिम विज्ञाद संकमो चेव, देखो अधा प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में गुण संक्रम विच्छिन्न होकर सब कर्मों का अधह चाहिए तो हो गया ना, यहाँ शास्त्र में वह अधह करना अधह प्रवृत्त संक्रम होने लगता है। अधह प्रवृत्तकरण अलग बात है और अधह प्रवृत्त संक्रमण अलग बात है। इतनी विशेषता है कि जिनका विद्यात संक्रम होता है उनका विद्यात संक्रम ही होता है। अश्विन भाई बोलो आप अध प्रवृत्त किसका होगा,
जिसका बंद होता है उसका
हाँ
बनने वाली का आदत होगी और बाकी का विद्या संक्रमण
जो बनती नहीं है विद्या संक्रमण होगा कोई फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे सातवें गुण स्थान में तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान
उसका क्या होगा विद्या संक्रमण होगा
और संज्वलन का द प्रोरूप संक्रमण
ज्ञानावरण का क्या होगा
अध प्रोरूप संक्रमण
देखो जिन कर्मों का बंध होता है उनका अध प्रवृत्त संक्रम होता है और जिन नपुसक वेद आदि अप्रशस्त कर्मों का बंध नहीं होता उनका यहां से लेकर विद्यात संक्रम प्रवृत्त होता है यह यहां इस सूत्र का अर्थ है हाँ जो नहीं बनते हैं
उसका विद्या
उनका विद्या और जो बनते हैं
दशावरण में भी तीन का विद्या होगा बाकी का तो प्रवृत्ति
तो साता वेदनी का संक्रमण होगा कि नहीं होगा यहाँ पर
बंद
संक्रमण
बनने वाली प्रकृति
साता वेदनी का यहाँ संक्रमण होगा कि नहीं होगा या होगा तो कौन सा होगा क्यों नहीं हो सकती वो कारण अरे उसका असाता का बंध है तब तक ही साता असाता रूप हो सकती है उदीर्ण की बात नहीं है
संक्रमण की बात
संक्रमण के लिए जिसमें संक्रमित होना है उसका बंध आवश्यक है तो साता वेदनी का
नहीं होगा
संक्रमण कहाँ तक होगा
छठे
छठे तक उदीर्ण
छठे
तक और बंध
मैं ऐसा था कहीं सोच रहा
था
साता का संक्रमण छठे तक है असाता का संक्रमण कहाँ तक होगा कहाँ तक होगा दसवें तक जहाँ तक स्थिति बनती है ना वहाँ
स्थिति
संक्रमण
हमने देखा था
पहले हमने देखा था
ना गाथा का समझ नहीं आता उदय सिद्धि को बंद
देखो देखो ये इसमें लिखा था
ये पुस्तक तो हुआ था ना
नहीं
ये संक्रमण
प्रस्तावना का 13 नंबर का पेज निकालना यानी मैं भी कहीं रॉन्ग नहीं हूँ ना तो देख लेते हैं
नहीं नहीं पक्का मालूम है हम लोग के ऊपर साथ को भी बात हुई थी
सेकंड पैराग्राफ प्रस्तावना पेज नंबर 13 मिला क्या मयंक भाई सेकंड पैराग्राफ साता वेदनीय उसका बंध और अपकर्षण 13वें गुणस्थान
नहीं ये प्रमुख
बंध और अपकर्षण संयोगी तक है साता की बात है यहाँ उदीर्णा तो छठे में रुक गई है इसलिए उदीर्णा को यहाँ नहीं लिया है अन्य कुछ कर्मों की उदीर्णा यहाँ तक चलती है 13वें तक साता वेदनी को यहाँ नहीं लिया केवल अपकर्षण लिया है उदीर्णा में अपकर्षण होकर उदय रूप होना उसको उदीर्णा कहेंगे वो बात यहाँ नहीं है तो बंध है और अपकर्षण है 13वें तक उत्कर्षण सूक्ष्म सांपराय साम्य पराय हुआ है सांपराय गुणस्थान तक होता है क्योंकि उत्कर्षण होने में बंद की अपेक्षा है और बंधने में स्थिति बंधेगी तो उत्कर्षण होगा इसलिए 10वें तक लिया उदीर्ण और संक्रमकरण प्रमत्त संयत गुणस्थान तक होते हैं क्योंकि वेदनीय की और आयु की उदीर्णा छठे तक है उसके साथ साथ संक्रमण भी लिया क्योंकि छठे तक असाता का बंद है क्योंकि साता किसमें संक्रमित होती है, मात्र असाता में, और संक्रमण के लिए बंध की आवश्यकता है। तो जिस परिणाम से असाता बनती है उसी परिणाम से साता है वो असाता रूप हो जाता है। उपशमना निदत्ति निकाचना हमेशा वो अपूर्वकरण के अंतिम समय तक, वो आठवें के अंतिम समय तक होते हैं। उदय और सत्व अयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं। असाता वेदिनी के, अभी असाता की बात है, उसका बंध कहाँ तक है? छठे तक। तो उत्कर्षण भी कहाँ तक होगा? छठे तक। और उदीर्णा, क्योंकि हमने देखिए वेदिनी की उदीर्णा छठे तक होगी।
छठे तक।
संक्रमकरण सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान हो गया, गुणस्थान तक होता है। यानी उस समय साता वेदिनी बन रही है और वहां तो कषाय सहित है जी, इसलिए उसमें स्थिति अनुभाग बनता है। तो इस पोजीशन पर उसका संक्रमण भी होगा। अपकर्षण सेवक केवली तक, जैसे हमने साता का देखा। उपशमना निदत्ति निकाचना अपूर्ण करने आठवें तक। उदय और सत्व अयोग केवली के अंतिम समय तक। साता का तेरहवें तक है, स्थिति का बंद।
ये जो असाता उसी में कन्वर्ट हो जाएगी।
हाँ, संक्रमित, संक्रमण जो है
वो तो वहीं तक ही है।
कितना भी होने दो, वो साता वेदिनी रूप हो गया, इतना ही। उत्कर्षण हुआ ऐसा नहीं कहा, संक्रमित हुआ है, संक्रमित हुआ इतना ही लेना वहां। अब हम आते अपने पेज पर, 97 पेज अपना चल रहा था। यानी अभी तक अपूर्वकरण तक गुण संक्रमण चल रहा था,
अभी
अधप्रवृत्तकरण शुरू होते ही बंधने वालों का अधप्रवृत्तकरण, अधप्रवृत्त संक्रमण चालू हो गया, करण नहीं, संक्रमण चालू हो गया। और जो नहीं बनते हैं ऐसी जो प्रकृतियां हैं उनका विद्या संक्रमण चालू होगा। यह मिथ्यात्व का संक्रमण होगा कि नहीं होगा?
होगा ना? होगा,
होगा। हाँ। उसको कौन सा कहेंगे?
विद्या संक्रमण।
विद्या संक्रमण। हाँ?
हाँ।
क्या कहते?
लिखा है ना, जिस नहीं बनती उसका।
तो मिथ्यात्व में अधप्रवृत्त संक्रमण कहाँ होता होगा? आप नहीं बोलना। हाँ। नहीं बोलना, मैं बोलूंगा।
प्रथम अभ्युक्तों का काल पूरा होने के पश्चात एक काल अंतर्मुक्त का प्रवृत्त होता है,
गुण संक्रमण होता है। मिथ्यात्व का गुण
अधप्रवृत्त संक्रमण।
मिथ्यात्व में आप उद्वेलना की बात, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं आप।
सॉरी,
मिथ्यात्व में जाने के बाद की बात है,
एक अंतर्मुक्त।
मैंने पूछा मिथ्यात्व का अधप्रवृत्त संक्रमण कहाँ होता है?
नहीं होता है।
बोलो। वो एक ही प्रकृति ऐसी है,
अधप्रवृत्त संक्रमण
122 में से, 120 में से। हाँ, बाकी तो दो बनती ही नहीं है।
121 का अधप्रवृत्त होता है।
हाँ, उसका बंध नहीं, मगर वो संक्रमण तो है उन दोनों का भी। हाँ, 121 का अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, मिथ्यात्व का नहीं होता है।
सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भी खाली अंतर्मुख तक ही होगा ना?
अंतर्मुख जब सम्यक से मिथ्यात्व में गया है
तो एक अंतर्मुख,
एक अंतर्मुहूर्त तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, उसके बाद उद्वेलना संक्रमण होता है। होता ही नहीं है बाकी अन्यत्र। अभी हमने क्या देखा? जिनका बंध होता है उनका अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। तो मिथ्यात्व का बंध कहाँ होता है? मिथ्यात्व में। तो वहाँ उसका अधप्रवृत्त संक्रमण होता होगा, तो वहाँ तो उसका संक्रमण ही नहीं होता है। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होता है, सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं होता है, और मिश्र में मिश्र होने का
नहीं होता है,
नहीं होता
धोखा
साधन में किसी का भी नहीं होता है। देखो आगे बढ़ेंगे, चढ़ने वाले उपशामक के क्या, हाँ ऊपर 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 प्राकृत उवसामगस्य पढ़म समय अपूर्वकरण पहुड़ी, यानी चढ़ने वाला अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर जहाँ वो पड़ीवद माणगस्य, ये माण गए ने वाला, जहाँ वो पड़ीवद माणगस्य चरिम समय अपूर्वकरणोक्ति, समझ में, चढ़ने वाला अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर पूरा चढ़ के उतरा और अपूर्वकरण के अंतिम समय तक, तदो एतो संखेज गुणम कालम पड़िनियतो अधापवत्त करणेन वसम सम्मत कद्धनम अनुपालेदी। चढ़ने वाले उपशामक के प्रथम समय से लेकर गिरने वाले उसी के अपूर्वकरण के अंतिम समय तक जो काल का योग होता है, यानी टोटल जो काल है, उससे संख्यात गुणे काल तक लौटा हुआ यह जीव अध प्रवृत्तकरण के साथ उपशम सम्यक के काल को धारण करता है। ओहो नहीं समझा, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां फिर दसवां नौवां आठवां, इनका पूरा जो काल है उससे उतरने वाले अध प्रवृत्तकरण का काल संख्या गुणा है।
या उपशम सम्यक तो की, अच्छा वो उपशम वहाँ पे द्वितीय उपशम चल रहे, वो अपेक्षा कर रहा है
द्वितीय उपशम का काल, नहीं कहा
नहीं, यहाँ पे
उपशम सम्यक में अधप्रवृत्त का कारण, अधप्रवृत्त के बाद भी उपशम सम्यक चालू रहेगा उसका द्वितीय उपशम। अधप्रवृत्त करण कब तक है उसकी बात उन्होंने बताई, हमने तो देखा बाद में स्वस्थान भी होगा, बाद में वो पांचवें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तो उपशम सम्यक सहित अधप्रवृत्त करण उपशम सम्यक तो इसके बाद भी चलेगा, मात्र अधप्रवृत्तकरण की बात की। आपको याद होगा हमने अल्प बहुतों में देखा था छठे का जितना काल है उससे पूरी श्रेणी लौटकर नीचे आता है छठे तक, उतना काल उससे भी वो छठे का काल बड़ा है। अभी यहाँ अधप्रवृत्त में लगा लेना, आठवें के स्टार्टिंग से आठवें के एंड तक जो काल है उससे भी अधप्रवृत्त करण जो है उपशम सम्यक का अधप्रवृत्त करण वो संख्यात गुणा है। अधप्रवृत्त करण में
उतरने वाले का प्रवृत्त,
हाँ नहीं उनका प्रश्न है उसमें छठा सातवां दोनों होते हैं कि अकेले सातवां होता है,
बताए ना छठा भी होगा
अभी नहीं है, स्वस्थान हो भी उतरेगा
बाद में छठा सातवां होगा ना,
स्वस्थान अभी वही नहीं है।
हाँ उसके बाद चलेगा, बाद फिर दोबारा द्वितीयोपशम करेगा। ये यहाँ पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, कषाय की उपशामना से गिरा हुआ यह जीव उपशम समय दृष्टि भी हो सकता है और क्षायिक समय दृष्टि भी हो सकता है, क्योंकि उपशम श्रेणी क्षायिक समय दृष्टि भी चढ़ सकता है और द्वितीय उपशम वाला भी चढ़ सकता है, क्योंकि दोनों के ही उपशम श्रेणी पर आरोहण करने में निषेध का अभाव है, दोनों ही चढ़ सकते हैं। उनमें से उपशम समय दृष्टि को अधिकृत कर इससे आगे की प्ररूपणा आरंभ की जाती है। क्षायिक में ये कहने की जरूरत नहीं कि तब तक उसका क्षायिक रहता है, अब ये अधप्रवृत्तकरण के साथ उपशम समय तो उसका चल रहा है ये बात बतानी। वह जैसे कषाय की उपशामना से लौटा हुआ यह जीव नीचे गिरकर फिर भी अंतर मुहूर्त हो करना सु हो गया, अंतर मुहूर्त काल तक अधप्रवृत्त संयत होकर उपशम सम्यक्त्व के काल को धारण करता है। इस प्रकार धारण करने वाले इस अधप्रवृत्त संयत के उपशम संयुक्तों का जो काल है, यानी अध प्रवृत्त संयुक्त के जो उपशम संयुक्तों का काल है, वह चढ़ने वाले उपशामक के अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर गिरने वाले उसी के अपूर्वकरण के अंतिम समय तक इस चढ़ने और उतरने में जितना काल लगता है उस पूरे काल से संख्यात गुणा होता है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, इसी सूत्र के उल्लेख से जाना जाता है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उपशम संयुक्त के काल के महात्म्य का ज्ञान कराकर, यानी उपशम संयुक्त का काल बहुत बड़ा है वो यहाँ बताने का उनका, हाँ द्वितीय उपशम संयुक्त तो किया उसने, अभी भी उसका द्वितीय उपशम तो चल रहा है, परंतु द्वितीय उपशम के काल में उसका अधप्रवृत्तकरण चल रहा है। नहीं, इसके बाद भी उपशम समय को चलेगा, अधप्रवृत्तकरण काल के बाद स्वस्थान हुआ तब भी द्वितीय उपशम चल रहा है, पांचवे में गया तब भी द्वितीय उपशम चल रहा है, चौथे में गया तब भी द्वितीय उपशम चल रहा है,
दूसरे में भी जाता है,
दूसरे में जाता है, अपन तब उपशम समय को नहीं रहेगा, वो सासादन कहलाएगा। वो जा सकता है, वो उसके उस काल के भीतर उसका उदय हो जाएगा तब, गिर कर जाता है, पर यानी उसका काल अभी भी बाकी था तब गिरा है, यानी वो काल उससे भी बड़ा ही कहलाएगा। तो कहते हैं इस किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समझ, इसी सूत्र के उल्लेख से जाना जाता है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उपशम संयुक्त के काल के महात्म्य का ज्ञान कराकर, फिर भी इस काल के भीतर ही जो विशेषताएं संभव है उनका कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंधक को कहते हैं, इस काल के भीतर यानी उपशम संयुक्त के काल के भीतर, अधप्रवृत्तकरण के नहीं, जब तक अधप्रवृत्तकरण चल रहा है तब तक वो उपशम संयुक्त ही चल रहा है उसका, और वो काल आठवें के शुरू से आठवें के अंत तक वाला जो है, चढ़ने वाले का शुरुआत और उतरने वाले के अंत, ये पूरे ही श्रेणी चढ़कर उतरने के काल से भी संख्यात गुणा बड़ा है। एदिस्से उसम सम्मत तद्धाये अभ्यंतरदो असंजमम पि गच्छेज्ज संजमासंजमम पि गच्छेज्ज दो भी गच्छेज्ज, यानी कोई पांचवे में जा सकता है, कोई चौथे में जा सकता है, कोई दोनों में जा सकता है, दोनों में ने एक में जाएगा तो अंतर्मुत ठहरेगा, फिर जाके दूसरे में चला जाएगा। इस उपशम संयुक्त के काल के भीतर वह असंयम को भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयम को भी प्राप्त हो सकता है, और दोनों को भी प्राप्त हो सकता है, कोई पांचवे में जाके चौथे में जाएगा, कोई चौथे में जाके पांचवे में आएगा वापस, अंतर्मूर्त तो रुकेगा ना एक गुण स्थान। हाँ, ये उपशम संयुक्तों का काल इतना बड़ा है ये बात बताने। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह जैसे इस उपशम संयुक्त के काल के भीतर संयम के साथ ही रहता ऐसा नियम नहीं है, किंतु कदाचित असंयम को भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परिणामों के निमित्त से उपशम संयुक्त के साथ असंयम पर्याय के प्राप्त होने में विरोध का अभाव है, का करना विरोधक हुआ, विरोध का अभाव है, यानी वो चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं, असंयम को प्राप्त कर सकते हैं। उपशम संयुक्त के साथ असंयम पर्याय लिखा है तो असंयम के कौन से गुण स्थान हो गए यहाँ पर? मालूम नहीं क्यों, बोलो ना क्यों असंयम के, मात्र असंयम लिखते, असंयम के गुणस्थान कितने हैं यहाँ की बात छोड़ो, असंयम के गुणस्थान एक से चार, तो यहाँ चौथा ही क्यों कह रहे हैं आप? उपशम समय तो चल रहा है, समय दृष्टि है, तो नीचे के तीन गुण स्थान नहीं कह सकते? उत्तर सही है, मगर आपको उसका रीजनिंग कहना चाहिए। हाँ, यानी आपने ऐसे बाय फ्लूक ऐसा उत्तर दिया कि निर्णय पूर्वक दिया, ये हमें कैसे समझेंगे हम? कदाचित संयमासंयम को भी प्राप्त हो सकता है, यानी द्वितीय ऑप्शन चल रहा है और पांचवे गुण स्थान में आ गए हो, क्योंकि परिणामों के निमित्त से ही प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर क्या कहा? क्यों उदय हुआ? उदय हुआ इसलिए परिणाम हुए ना, क्या लिखा?
परिणामों के निमित्त से।
कर्णानुयोग बता रहा है। ये परिणामों के निमित्त से ही प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने पर उपशम समित्व के काल से युक्त संयमा संयम गुण के ग्रहण करने में कोई निषेध नहीं है। कदाचित दोनों को भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परिणामों की विचित्रतावश इस काल के भीतर इसे क्रम से संयमा संयम और असंयम रूप परिणमाना संभव है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। परिणाम ऐसे कुछ पलट जाएंगे, संयमा से में अंतर्मूर्त रह गया, फिर संयम को असंयम को प्राप्त हुआ, इसलिए पहले असंयम को प्राप्त कर वहां अंतर्मूर्त काल तक रहकर पीछे इसे संयमा संयम रूप से परिणमाना संभव है, अथवा पहले संयमा संयम को प्राप्त कर वहां अंतर्मूर्त काल तक रहकर पश्चात इसे असंयम को भी प्राप्त कराना संभव है। कराने नहीं, उसके परिणाम के कारण वो हो जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब केवल इस काल के भीतर यह अनंतर पूर्ण ने पूर्व यानी अनंतर पूर्व कही गई असंयम और संयमासंयम भाव का परिवर्तन ही होता हो ऐसा नहीं है, मात्र वो चौथे या पांचवे में जाता है इतना ही नहीं है। तो कहते यहाँ पर अन्य गुणांतर रूप परिणाम भी अविरुद्ध है। अन्य गुणांतर यानी अन्य गुण रूप से हो जाना, यानी अन्य गुण स्थान रूप से हो जाना, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, यानी परिणाम की और भी विचित्रता बता रहे हैं यहाँ पर। छसु आवलियासु शेषासु आसानम पि गच्छेज, आसान कहो सासान कहो सासाधन कहो आसाधन कहो, यानी उसमें से भ्रष्ट हो जाना। उपशम सम्यक्त्व के काल में छह आवली शेष रहने पर वह सासाधन गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकता है। आने वाले की बात है नहीं, क्योंकि हमने देखा था द्वितीय उपशम नहीं आते ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि वो विसर्जना करने वाला है। परंतु हमने पहले बात देखी थी कि परिणाम ऐसे है कि एक ही समय में संयोजना होकर और वो मात्र सासाधन में ही होता है। सासाधन ही ऐसा गुणस्थान है कि वहां अनंतानुबंधी का उदय होता है तत्काल। हाँ। नहीं तो हमेशा क्या होता है, मिथ्यात्व में जाएगा तो बंद करेगा और आवली के बाद उसका संक्रमण और उदय सब शुरू हो जाएगा। बंधावली नहीं, वो बात नहीं, पहले ही समय में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो अनंतानुबंधी रूप से उदय में आ जाते, बंधावली वो नहीं आएगी। कन्वर्ट होने के लिए भी एक आवली की लिमिट है, परंतु मात्र सासाधन के लिए वो लिमिट नहीं है। वहाँ ऐसा कहा था जहाँ 21 प्रकृतिक बंध स्थान है, 21 प्रकृतिक समझते हैं कौन सी? मिथ्यात्व में कितने प्रकृतियों का बंध है? यहाँ 21 कहा तो मिथ्यात्व में कितना होगा? 22। यहाँ एक मिथ्यात्व नहीं है, बाकी सब है। उपशम ये हो गया ना, उपशम सम्यक्त्व के इस अवशेष काल का यथोक्त न्याय से यानी जैसे बता है उस न्याय से संयम के साथ असंयम के साथ अथवा संयमासंयम के साथ पालन करता हुआ यह जीव इस काल के बहुभाग क्षीण हो जाने पर, यानी अभी भी वो चौथा किया पांचवा किया बहुभाग अभी उसका गया है, अंत में एक समय से लेकर उत्कृष्ट छह अवली प्रमाण काल शेष रहे, किस अवस्था के भीतर कदाचित सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परिणामों के निमित्त से अनंतानुबंधी प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले के उस अवस्था में उस भाव के प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। सातवें में से आता नहीं, छठे से आएगा, छठे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है, चौथे से आ सकता है। उदीर्णा ली उन्होंने, है ना, उदय हो वहाँ भी आता है ना द्वितीयोक्षम करने वाले के, यहाँ तो लिखा था इस पुस्तक में, तो उसके विषय उनके कहते हैं। हाँ, प्रथम द्वितीयोक्षम चल रहा है, चौथे से आ सकता है, पांचवे से या छठे से, सातवें से तो कोई नहीं गिरेगा दूसरे में, जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है। हाँ ना, कहाँ पूर्व वितराग हुआ था, अब सासाधन में नियम से मिथ्यात्व में जाएगा ही, इसलिए कहते ना शास्त्र में देखो परिणामों की विचित्रता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा ग्यारहवें गुणस्थान को पूर्ण वितराग हुई थी, अब ये सारा अंतर्मूर्त का ही मामला है, एक अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में चला गया, पर लोग समझते हैं कि ग्यारहवें से डायरेक्ट मिथ्यात्व में जाता है, ऐसा नहीं है, क्रम से तो सातवें तक आएगा, फिर छठा सातवां चलेगा, फिर हो सकता है पांचवें में गया, चौथे में गया, या डायरेक्ट छठे में से दूसरे में आया और फिर जाके मिथ्यात्व में चला जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि कर्म का उदय आया है, इसलिए इसके परिणाम के निमित्त से कर्मों का उदय आया है, बार बार लिखा है यहाँ पर।
दो बार चढ़ता है वो, मतलब वो गए तो उक्षम श्रेणी विकास का भी भूमि पर जाके आया और नीचे आके अपने मिथ्यात्व के नीचे आके गिर गया, तो उक्षम श्रेणी दो बार चढ़ता है, जो उक्षम श्रेणी दो बार चढ़ता है वहाँ पर मरता है, तो वो दत्त नरक जाता है, देवगति में जाता, मनुष्य में नहीं है, तो मरेगा तो वो सीधा देव में जाएगा, इसलिए दो बार वो शिखर जी चढ़ा वो नरक और तिरंज गति
साधन में। हाँ, मिथ्या तो अगर आयु बंधन नहीं किया हो और मिथ्या तो में जाता है, अब साधन में भी मरेगा तो देव में ही जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बंध किया ही नहीं उसने, उपशम समय तो के काल में आयु का बंध नहीं है, तो उसने आयु का बंध कब किया होगा, पहले किया होगा, जिसने मनुष्य तिरंजायु नरकायु बांधी उसको पांचवा भी गुणस्थान नहीं होता, तो उसको उपशम श्रेणी चढ़ने का क्या सवाल है,
प्रणाली से सिद्ध नहीं होते ये जो बातें जो बोलते
हैं, अब कहीं पर भी लगाओ
आप गलत रास्ते पे चला देंगे,
कैसे कुछ हो रहा
है, मैं एक बार जाके आया हूँ, कल जाके आता हूँ दूसरी बार,
चलो चलो अभी यात्रा निकालेंगे आप, तभी हम आएंगे सब,
हम इसमें दोषी लेके जाएंगे सब,
अभी ऊपर प्राकृत रह गया, देखो आसानम पुण गदो जदि मरदि न सको निरय गदिम तिरिक्ख गदिम मनुष गदिम वा गंतुम नियमा देव गदिम गच्छति। ऐसे भी सासाधन वाला नरक में नहीं जाता, परंतु उपशम श्रेणी से गिरकर सासाधन में आया हुआ, यानी द्वितीय उपशम वाला जो सासाधन में आता है वो मनुष्य तिरिंच में भी नहीं जाता, नरक की तो बात छोड़ दो, वो तो प्रथम उपशम के लिए भी वो साधन वाले के लिए लागू होता है। परंतु हिंदी, परंतु सांसाधन को प्राप्त हुआ यह जीव यदि मरता है, यानी सांसाधन के काल में मरता है, तो वह नरक गति, तिर्यंच गति अथवा मनुष्य गति को नहीं जा सकता, नियम से देव गति को ही जाता है। इस सूत्र द्वारा सांसाधन गुण के साथ जिसने पर्याय को प्राप्त किया है, उसके नरक तिर्यंच और मनुष्य गति में उत्पत्ति का प्रतिषेध करके देवगति में ही उत्पत्ति का नियम किया है। पर्याय प्राप्त किया है ना, वहां मरकर ये नए पर्याय में जन्म लिया है। अब इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। हाँ, आपका गति ने आयु नहीं, आयु का बंद हो, फिर अंतर्मूर्त रुके और फिर मरण हो जाए, नहीं इतने एक आवली में तो वो नहीं होगा। और अभी जो अभी जो उतरेगा वो कौन सी बांधेगा? देखो यहाँ कुछ बातें आगे है, हम देखेंगे इसको। ऐसा ऊपर हंदी का अर्थ क्या है? हंदी तिशु आयु से 91 बंधे ना, 100 पेज का जरा देख लो, हंदी का ये क्या अर्थ है ख्याल नहीं है, हंदी लिखा है, हंदी तिशु आयु से पढ़ेंगे, हंदी तिशु आहु येसु अक्के नवी बद्धे न आऊगे न सबको कसाय उसा में दूं। ऐसा नियम है कि उक्त तीन आयुओं में से जिसने किसी भी एक आयु का बंद किया है, वह कसायों को उपशमन्य के लिए समर्थ नहीं हो सकता। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु का बंद किया हो तो उपशमा ही नहीं सकता, क्योंकि पांचवे में भी नहीं जा सकता, क्योंकि देवायु को छोड़कर शेष तीन आयुओं में से जिसने किसी भी एक आयु का बंध किया है, उसका उपशम श्रेणी पर चढ़ना अत्यंत असंभव होने से उसका निषेध किया है। इसका भावार्थ यह है, यह उपशम श्रेणी से गिरने वाला भी बद्ध परभवायुष्क भी हो सकता है और अबद्ध परभवायुष्क भी हो सकता है। यानी जिसने आयु नहीं, बद्धायु अबद्धायु कहेंगे हम, दोनों हो सकते हैं। उसमें से यदि वह अबद्ध परभवायुष्क है तो उसका यहाँ सासाधन गुणस्थान में मरण संभव नहीं है, ये बात बताइए। अबद्धायु का सासाधन में मरण नहीं होगा। क्योंकि आयु का बंद किए बिना मरण नहीं होता, इसी कारण यहाँ आकर आयु का बंद नहीं होता है, ये बात सिद्ध होती है
ना।
तीसरे में नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, कहाँ पड़ा? यहाँ पर द्वितीयोक्षम करके आने वाले की बात है। और यदि पहले से ही बद्धायुष्क स्वीकार किया जाता है तो भी सासाधन गुण के साथ मरण को प्राप्त हुए इस जीव की देवगति के सिवा अन्यत्र उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि देवायु को छोड़कर बांधी गई अन्य आयु के साथ संयमा संयम और संयम गुण की प्राप्ति का अभाव होने से उसका उपशम श्रेणी पर चढ़ना संभव नहीं है। पांचवा नहीं हो सकता तो ऊपर की बात ही क्या है। क्या क्या जो अबद्धायु है वो नहीं जा, वो मरेगा नहीं सासाधन में कभी।
ये तो मरण का ही निषेध किया ना,
मरण का निषेध किया। हाँ तो वो मिथ्या तो में मरा कहेंगे, सासाधन में मरा नहीं कहेंगे। सासाधन में मरने वाले की बात चल रही है, सासाधन में आयु बंध का निषेध तो नहीं है। आयु बंध का निषेध नहीं है, हो सकता है परंतु आयु बंध होकर वहीं पर मर नहीं सकता। तो यहाँ तो सासाधन में मरने वाले की बात चल रही है। आयुबंध का निषेध तीसरे में है, दूसरे में तो नहीं,
नहीं है,
परंतु है ना। अंतर्मूर्तक बंधेगी, फिर अंतर्मूर्त विश्राम होगा और फिर बाद में मरेगा कोई भी जीव। तो यही मानकर यही मरण नहीं होगा। तो यहाँ भी बांधेगा तो कौन सी बांधेगा, क्योंकि अभी अभी विशुद्धि है ना उसकी उतनी। हाँ, वैसे तो तीरियन चाय के बंद की विच्छुति दूसरे में है। अब वो लंबे काल तक सासाधन में रहेगा तो हो सकता है तीरियन चाय का भी बंद प्रारंभ करे। अभी क्या परिणाम अच्छे होते तो दूसरे में क्यों आता
है।
पर बंद की विच्छुति कहने का सवाल यानी वो क्या आता है, तीरियन का बंद यहाँ पर है यानी यहाँ देव तीरंज मनुष्य तीनों आयु बंध सकती है। सासाधन में आयु बंध का निषेध है ही नहीं है। नरक नहीं बंधेगी, नरकायु की बंध विच्छेद पहले में हुई है, इसलिए यानी आयु बंध होगा परंतु यहाँ आकर आयु का बंध हुआ और फिर यहीं पर मारा, ये बात यहाँ नहीं होगी। ये बात बताने का कहते एदेन कारणेन निरय गति तीरिक्ख जोणी जोनी मनुष्य गदियों न गच्छदी। तिरिक्ख लिए जोनी लिखा, गदी नहीं लिखा। इस कारण से उक्त जीव नरक गति, तिरियंज गति और मनुष्य गति को नहीं जाता है। नहीं जाता है ना, यहाँ मरकर की बात। यह सूत्रगत अर्थ है,
आयु की बात, गति की बात।
कहाँ नहीं जाता उसकी बात है, आयु में तो बंद की बात है। मरकर उन पर्यायों में उत्पन्न नहीं होगा। तिरंज को योनि कहने की पद्धति है।
आज वो नीचे बैठे सोच रहे थे क्या,
उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर है।
आप हर रहे जाते
ऐसा सवा परुणा परुवणा पुरीस वेदस्य कोहेन उवठिदस्य। यह सब प्ररूपणा क्रोध के साथ उपस्थित हुए पुरुष वेद की उपशामक्ति है। यानी पुरुष वेद और क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले की ये पूरी प्ररूपणा होगी। पूरा जो जो कथन हुआ है अभी तक का, चढ़ने वाले का भी और उतरने वाला का भी, वो पुरुष वेद और क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले की बात। इसी का अर्थ होता है कि अन्य वेद से और अन्य कषाय से चढ़ने वालों की प्ररूपणा में कोई डिफरेंस होगा। हाँ। अनंतर कही गई यह पूरी प्ररूपणा यानी सभी पूरा वर्णन क्रोध के उदय के साथ उपस्थित हुए पुरुष वेदी उपशामक की प्ररूपित जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब मान संज्वलन के साथ उपस्थित हुए पुरुष वेदी उपशामक के ही, यानी वेद वही रखा, क्रोध के बदले मान कषाय के उदय से ही चढ़ने वाले की बात करेंगे। चढ़ने और उतरने की अवस्थाओं में जो प्ररूपणा भेद है उसका विशेष व्याख्यान करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते। आप कुछ कह रहे थे, हाँ तीन वेद और चार कषाय। अब कहते तम जहाँ नहीं उसके ऊपर एक रिंग है पुरी सवेदस्य चैव मानेन उवट्ठिदस्य नानत्तम। मान के साथ चढ़े हुए पुरुष वेदी की प्ररूपणा में जो भेद है उसे बतलावेंगे। नानत्तम यानी नानात्व न नानापना यानी कुछ विशेषता उसकी। हाँ उसी को नानात्व को उन्होंने भेद कहा। मान के साथ चढ़े हुए पुरुष वेदी की प्ररूपणा में जो भेद है उसे बतलावेंगे। बतलावेंगे इतना विशेष वाक्य इस सूत्र में जोड़ना चाहिए, अन्य सब सुगम है। वहाँ केवल नानत्तम इतना ही बताया,
मैंने
उसमें विविधता है उसको बता रहा हूँ या बतलाएंगे ये बात हमने यहाँ उन्होंने जोड़ दी। तम जहाँ वह जैसे, अभी वो क्या नानत्व है वो बताएंगे। यह सूत्र सुगम है। जाव सत्तनो कषायाणम उवसामणा ताव नत्थी नानत्तम। जब तक सात नौकषायों की उपसामना होती है तब तक भेद नहीं है। तो क्या क्या होता है बोलो अश्विन भाई।
अत प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण।
हाँ अत प्रवृत्त अपूर्वकरण हुआ, फिर
अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग जाने के बाद हाँ। उसने अंतरकरण किया,
अंतरकरण किया उसके बाद
समय स्त्री वेद को समय और पीछे सात नौकषाय को उपसमना।
हाँ तब तक भेद नहीं कहा। चढ़ने वाले जीव के अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर वो तो सब सब हो गया। सात करण वो शुरू होते हैं और वहाँ जो क्रोध की प्रथम स्थिति बनती है, जहाँ क्रोध की प्रथम स्थिति बनेगी उसके बदले इसकी कोई डिफरेंस होगा। चढ़ने वाले जीव के अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक अंतर करके नपुसक वेद और स्त्रीवेद की उपशामना के अनंतर सात नौकषायों की उपशामना समाप्त होती है तब तक इस बीच में क्रोध के उदय से चढ़े हुए उपशामक की प्ररूपणा से मान के उदय से चढ़े हुए उपशामक के थोड़ा भी प्ररूपणा भेद नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में वह पाया नहीं जाता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी मान से ही चढ़ने वाले के नपुसक वेद श्रीवेद और सात नौ कषायों की सपना में कोई डिफरेंस नहीं है।
उपशम नहीं।
हाँ उपशम ना, यहाँ उपशम की बात। अब इससे आगे क्रोध संज्वलन की उपशामना करने वाले की अपेक्षा कंपेयर किसको करेंगे, जो हम देख आए हैं क्रोध की उपशामना के उसकी क्रोध की उपशामना करने वाला जीव है, क्योंकि पहले में पहले क्रोध की उपशामना करेगा। क्रोध के उदय से क्रोध की उपशामना करने वाला था और ये मान के उदय से ही क्रोध की उपशामना करेगा। उसकी अपेक्षा इसकी प्ररूपणा में कुछ भेद है, इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। उवरी मानम वेदंतो कोहम उवसामेदी। मान को वेदता हुआ यह जीव सात नौकषायों की उपशामना के अनंतर क्रोध को उपशमाता है।
या क्रोध का उदय ही नहीं होता है,
नहीं पहले से ही मान का ही उदय रहता है।
मान का उदय से चढ़ रहा है और क्रोध की प्रथम स्थिति बनेगी वो खाली आवली भ्रमण बनेगी। आवली भ्रमण
अंतर के जब अंतर बनाएगा तब। वो बात उन्होंने लिखी नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है,
क्रोध को
वो जब क्रोध को पहला जीव क्रोध को उपशमाते समय क्रोध का उदय था। अब ये मान सहित चढ़ने वाले के क्रोध के उपशमने के समय भी मान का ही उदय था। देखो पहले का उपशामक
अश्विन भाई की जो बात है वो अंतकरण के समय काबू होगी, जब अंतकरण कर रहा होगा पहले की बहुत पहले आगे
अंतर वो अंतकरण करेगा
तब जो है
तो उदय रूप। हाँ उदय रूप मान जो है उसके तो अंतर्मूर्त प्रमाण होगी और वो अंतर्मूर्त कितना बड़ा होगा
उसका अपमान का।
हाँ, क्रोध से ही चढ़ने वाले ने इतनी गुण श्रेणी बनाई थी क्रोध की, क्योंकि वो जब गलित होकर आवली रहेगी तब मान की बनाई थी। अब जो मान से ही चढ़ता है वो स्टार्टिंग से ही दोनों की मिलकर जितनी उतनी बनाई,
और क्रोध की वहां भी इतनी बनाई थी, अभी ये और आवली बराबर बनाएगी जो वो बोल रहा
है। अभी तो आवली बराबर ही बनेगा, अभी तो इतना ही बनेगा और मान की डबल हो जाएगी। वो बात शायद आगे कहीं लिखेंगे। हाँ, अभी वो किसी अपेक्षा से बता रहे, उसकी अपेक्षा पहले हम देखते, आगे चलकर कहीं आता है तो देखेंगे। तो पहले में पहले क्या डिफरेंस हुआ, मान को वेदता हुआ सात नौकरशाही की उपशमना के अनंतर क्रोध को उपशमन। पहले का उपशामक क्रोध संज्वलन का अनुभव करता हुआ तीन प्रकार के क्रोध को उपशमाता है, यानी उस उपशम के काल में उसको
अनुभव करता हुआ मीन्स क्रोध
वेदन करता हुआ, यानी उदय होता हुआ,
क्रोध का उदय होता हुआ, उदय का शब्द यहाँ पे ही नहीं, मान रूप उदय है।
पहले क्या था,
पहले का उपशम,
हाँ, जो पहले हम पढ़ के आए हैं।
अच्छा, वो क्रोध का
बात चल रही, पहले का लिखा ना,
हाँ, चढ़ा था
पहले का उपशामक क्रोध संज्वलन का अनुभव करता हुए, क्रोध का उदय होते हुए
क्रोध को उपशमाता है,
तीन प्रकार के क्रोध को उपशमाता है। परंतु यह जीव, यह ने अभी मान का उदय वाला, मान के उदय से चढ़ा हुआ होने के कारण मान का वेदन करता हुआ तीन प्रकार के क्रोध को उपशमाता है, यह भेद यहाँ जानना चाहिए।
उपशमन का कार्य भी करो, जिसे नपुंसक वेद को उपशमन आता है, स्त्री वेद को उपशमन आता है, इसी ये क्रोध को उपशमन आता है।
वहाँ तो डिफरेंस नहीं था कुछ,
हाँ।
यहाँ क्या डिफरेंस है,
यहाँ मान के
वो जीव क्रोध के उदय वाला था,
यहाँ मान के उदय,
और ये मान के उदय वाला था तभी क्रोध को उपशमन आता है। देखो यहाँ विशेषार्थ में लिखते, पहला क्रोध के उदय से चढ़कर तीन क्रोधों को उपशमाता था, यह मान के उदय से चढ़कर तीन क्रोधों को उपशमाता है, यहाँ यह भेद है। अभी तो उदय की बात चली, किसका उदय होते हुए क्रोध को उपशमाया है उसको यहाँ पर डिफरेंस में ले लिया। अब दोनों ही उपशामकों के क्रोध के उपशमाने का काल समान होने से उसमें कुछ भेद नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी क्रोध के उदय वाला क्रोध को उपशमाता है,
और
मान के उदय वाला क्रोध को उपशमाता है, दोनों के क्रोध के उपशम का काल समान है। तो कहते हैं, जद्दे ही कोहे न उठिदस कोहस उवसामणद्धा, तद्दे ही चेव माने न भी उठिदस कोहस उवसामणद्धा, उपस्थित हुए ने उसके उदय से चढ़े हुए। जितने प्रमाण वाला क्रोध से चढ़े हुए जीव के क्रोध का उपशमना काल है, उतने ही प्रमाण वाला मान से चढ़े हुए जीव के भी क्रोध का उपशमना काल है, यह सूत्र सुगम है। अब इनकी प्रथम स्थिति के विषय में कुछ भेद है, इसका कथन करते। अभी ये बात आई, प्रथम स्थिति में जो कोई भेद होगा उसकी बात अभी यहाँ आती है। आगे के सूत्र को कहते हैं, कोधस पढ़मठिदी नथी, मान के उदय से चढ़े हुए जीव के क्रोध की प्रथम स्थिति नहीं होती। पहले का जीव अंतर को करता हुआ क्रोध संज्वलन की अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति करता है, परंतु इसके क्रोध की प्रथम स्थिति नहीं होती, क्योंकि यह क्रोध संज्वलन का वेदन नहीं करता, इसलिए क्रोध की प्रथम स्थिति के संबंध का अभाव है। इसलिए किए गए अंतर के प्रमाण के अनुसार ही यह जीव मान की प्रथम स्थिति को स्थापित करता है। अभी जीव के मान की प्रथम स्थिति कितने प्रमाण वाली होती है, ऐसे शंकाशील शिष्य को उसके प्रमाण का निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र आया।
यहाँ पे ये आगे बताया है कि बांध की प्रथम स्थिति को सब आप इस चीज के मान लें किए गए अंतर के प्रमाण के अनुसार। अंतर का प्रमाण तो समान ही होगा ना।
क्या कहा?
ये नीचे से इसलिए किए गए अंतर के प्रमाण के अनुसार।
हाँ, संबंध का अभाव है, क्रोध की प्रथम स्थिति के संबंध का अभाव है, इसलिए किए गए अंतर के प्रमाण के अनुसार ही। हाँ, वो तो अंतर कितना होता है उसका, उसके जो बनेगी वो कितना बनाता
गए
है
अंतर के प्रमाण अनुसार।
उस प्रमाण में उसको कहेंगे, केवल डिफरेंस कहाँ होगा, क्रोध का उपशमने का काल और मान का जो काल है वो मिलकर इसकी होगी अपनी। क्रोध वाले ने उसकी छुट्टी बनाई थी, इसके डबल हो जाएगी।
नहीं, वो तो हमने कैसे देखा था, क्रोध का उदय काल प्लस आवली प्रमाण जो उसकी स्थिति
में है।
हाँ, ऐसा भी देखा था हमने।
हाँ, वो शायद उन्होंने वो गाउन करके नहीं लिखा होगा, अभी देखेंगे आगे पढ़ेंगे।
प्रमाण होती थी, होगी ना।
ये ऊपर पढ़ा ना हमने, क्रोध से चढ़े हुए जीव के क्रोध की और मान की जद्दई कहाँ आया था? अच्छा, वहाँ पर आया था लास्ट में 102 पेज पर, यहाँ नहीं पढ़ा था। जद्दई कोहे न उठिदस कोदस च मानस च पढ़मठिदी तद्दई माने न उठिदस मानस पढ़मठिदी। क्रोध से चढ़े हुए जीव के क्रोध और मान की जितने आयाम वाली प्रथम स्थिति होती है उतने आयाम वाली मान से चढ़े हुए जीव के मान की प्रथम स्थिति होती है। शंका, इस जीव के मान की प्रथम स्थिति इतनी बड़ी हो गई, इसका क्या कारण है? ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रथम स्थिति हुए बिना नौ कषाय तीन प्रकार के क्रोध और तीन प्रकार के मान की उपशामना के लिए प्रथम स्थिति और उपशामना क्रिया इन दोनों की समानता नहीं बन सकती, क्योंकि जितनी प्रथम स्थिति है तब तक ये अन्य अन्य कर्मों की उपशामना चलेगी। इसलिए मान से चढ़े हुए उपशामक के मान की प्रथम स्थिति, क्रोध से चढ़े हुए उपशामक के क्रोध और मान की प्रथम स्थिति को मिलाकर जितना प्रमाण होता है उतनी होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। माने व संते एतो शेषस्य व सामेयवस्य मायाए लोभस्य च जो कोहेन उठिदस्य व सामण विधि सोचेव कायवो। मान के उपशांत होने पर आगे उपशमने योग्य माया और लोभ की उपशामना करने वाले इस जीव के क्रोध से चढ़े हुए जीव के उक्त प्रकृतियों की जो उपशामना विधि है वही करनी चाहिए। क्रोध से जो चढ़ा था उसने क्रोध के बाद मान की उपशामना की थी, फिर माया की और फिर लोभ की। मान से चढ़े हुए जीव ने
माया की
वो 7 कषायों तक समान था, डिफरेंस कहाँ था? उस पूरी पहली स्थिति क्रोध की और मान की मिलकर जितनी होती वो उतनी बनाई थी, और मान के उदय के रहते हुए ही क्रोध को उपशमाया था और उसके बाद मान को उपशमाया था। आगे को माया और लोभ का जो विधान है प्रोसेस है वो सेम सेम। हाँ, नहीं बनी, वो आवली को नहीं बनी कहा होगा तो ठीक है। यहाँ नहीं बनी इतना लिखा था,
यह तो निषेध ही किया है, तो बनी नहीं ऐसा ही समझना चाहिए।
निकालो लब्धि सर, कपट के ऊपर होगा, न्यूज़पेपर का कवर है उसको। क्योंकि हमने पहले क्या देखा था कि
पहले तो आवली और
आवली और रियल है। कोई बात नहीं, ये अगस्त का ये इसमें ढूंढने में तकलीफ होती है मेरी। हाँ हाँ, क्योंकि जो जो पुस्तक पढ़ी है ना उसमें जल्दी मिल जाता है। उपशम का ना चारित्र उपशम ना 290 आगे उषम श्रेणी चढ़ने वाले 12 प्रकार के जीव है उसकी बात बताते हैं। यही बात यहाँ पर बताई कि पुरुष वेद और क्रोध के उदय सहित चढ़े जीव के क्रोध और मान की प्रथम स्थिति मिलाई हुई जितनी होती है उतनी मान के उदय सहित चढ़े जीव के मान की प्रथम स्थिति होती है। उसी का भावार्थ बात लिखी है, वो अंतर की बात लिखी नहीं है। हाँ, जिस वेद व कषाय का उदय से जीव श्रेणी चढ़िया हुई ताकि तो अंतर्मूर्त मात्र प्रथम स्थिति स्थापे है उस प्रथम स्थिति के ऊपर के निषेकन का अंतर करता है और उदय रहित वेद व कषाय की आवली मात्र स्थिति छोड़ी उसके ऊपर के निषेकों का अंतर करता है। ये बात आ गई
किसी
अवली प्रमाण तो होगी उसको गौण करके वहाँ उन्होंने नहीं स्थापित ऐसा लिखा
छोड़ के अंतर करता
है। हाँ वही बात है, यानी आवली प्रमाण तो करेगा ही। ये हमने पहले ही रोल बताया था, अनुदय रूप प्रकृतियों का आवली प्रमाण होती है वो नहीं के बराबर है ना, उसका तो उदय होने वाला ही नहीं है, अन्य रूप से वो तो जो कुछ नष्ट होने वाले हैं। अब जद्दे ही पढ़ा था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ वही करनी चाहिए। 104 पर आ गए। मान से चढ़े हुए जीव के मान के उपशांत हो जाने पर एत्तो यानी अर्थात उसके आगे शेष माया और लोभ की उपशमना करने वाले मान से चढ़े हुए जीव के वही विधि करना चाहिए जो क्रोध से चढ़े हुए उपशामक के पहले उपशमना विधि कहे आए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार चढ़ने वाले के नानापने की गवेषणा करके, नानापने ने उसमें जो था अब इसी के नहीं, जो मान के उदय से ही जो चढ़ा था उसके उतरने की अवस्था में विशेष संभव है उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र निबंध आया है। जैसे चढ़ने में क्या डिफरेंस था, उसकी प्रथम स्थिति डबल बनाई थी हमने कि क्रोध की और मान की मिलकर जितनी थी उतनी बनाई थी और उसके मान के उदय होते हुए क्रोध को उपशमाया था, अब उतरने में क्या डिफरेंस है वो अभी सूत्र में बताएंगे। माने न उठिदो उवसा में यूण तदा परिवदिदूण लोभम वेदय मानस जो पूव परुविदो विधि सोचेव विधि कायवो एवं मायम वेदे मानस। उतरने वाले लोभ के वेदक काल और माया के वेदक काल में कोई डिफरेंस नहीं है, यह हिंदी में पढ़ेंगे। मान से श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के चारित्र मुनि को उपशमा कर और वहां से गिरकर लोभ का वेदन करते हुए जो पहले विधि कहे आए हैं वही विधि करनी चाहिए। इसी प्रकार माया का वेदन करने वाले जीव के जानना चाहिए, यानी यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। मान कषाय के साथ श्रेणी पर चढ़कर कषायों को उपशमा कर और उपशांत कषाय गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहकर गिरता हुआ यह जीव जब तक लोभ का वेदन करता है तथा कृष्टिगत और स्पर्धगत माया ला क्यों कृष्टि और सर्द ने बताया
लोभ का चेंज है
ये कृष्टि और ये लोभ में बताया ऊपर देखो माने ने उठी दो वह सामे यूण उवसंत कसाय गुण ठाने अंतो मूत्तम अच्छीयूण परिवद मानगो जाव लोभम वेदयदि किट्टिगदम फड्डेगदम च लोभ के लिए वो कृष्टिगत और फड्डेगत है वो लोभ का विशेषण है जाव ये मायम वेदयदि क्योंकि क्या है संस्कृत में आगे पीछे कहीं भी उसका विशेषण है तो वो आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं जब तक कृष्टिगत और स्पर्धगत लोभ का वेदन करता है ऐसा चाहिए क्योंकि स्पर्धक और कृष्टि तो लोभ नहीं बनी थी तथा अब ये कृष्टिगत निकालना फिर से एक कषाय गुण स्थान में अंतर्मुत रहकर मिला गिरता हुआ यह जीव जब तक कृष्टिगत और स्पर्धगत लोभ का वेदन करता है तथा आगे का वो दो शब्द निकाल दो माया का जब तक वेदन करता है तब तक अपने अपने स्थान में नानापन नहीं है तथा उदयादि गुण श्रेणी निक्षेप और पूर्वोक्त अवस्थित आयाम के साथ उन दोनों का अपने अपने वेदन करने के काल में पहले के समान वेदन करता है यह सूत्र का भावार्थ है यानी तब तक की प्ररूपणा में कोई डिफरेंस नहीं है तदो मानम वेदयंतस्य नानत्तम इसके बाद मान का वेदन करने वाले जीव की प्ररूपणा में नानापन अर्थात कुछ भेद है यह सूत्र सुगम है तम जहां वह जैसे यह सूत्र सुगम है गुणसेडी निखेवो ताव नवन्नम कसायाणम शेषाणम कम्माणम गुणसेडी निखेवेण तुल्लो सेसे सेसे च निखेवो नौ कषायों का गुणश्रेणी निक्षेप ये नौ कषाय कौन है आप बताएंगे हाँ नौ बनाओ नौ कैसे हुए आप बताएंगे नौ कैसे बने तीन लोभ
तीन
माया और तीन मान लोभ माया और मान क्योंकि मान का उदय शुरू हुआ है तो यहीं पर उसकी ये जो नौ जो कषाय है उनका गुण श्रेणी निक्षेप कैसा हो जाता है शेष कर्मों के ने ज्ञानावरणादि के समान हो जाता है क्रोध में क्या डिफरेंस था बोलो हाँ आप बताएंगे नहीं वहाँ नौ कषायों की गुण श्रेणी का निक्षेप थोड़ा बड़ा हुआ था
क्रोध
जब क्रोध का शुरू हुआ था तो 12 कषायों का एक साथ बढ़कर ज्ञानावरणादि के समान हुआ था क्योंकि वहाँ हमने एक नियम पढ़ा था कल कि जिस कषाय के उदय से चढ़ा हुआ हो
उसका उदय
उसका जब उदय शुरू हो जाता है
गुणश्रेणी निक्षेप
तब जाके सभी कषायों का गुणश्रेणी निक्षेप
अन्य कर्मों के
समान हो जाता है और बाद में वो गलित अवशेष हो जाता है अब इसका कषाय का तो उदय होने वाला नहीं यहाँ पर तो क्या कहते हैं नौ कषायों का गुणश्रेणी निक्षेप शेष ऊपर का पढ़ा ना हमने शेष कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के समान होता है और प्रति समय शेष शेष में निक्षेप होता है, यहीं से लेकर गलितावशेष हो। क्रोध से चढ़ने वाले का जब क्रोध का उदय शुरू हुआ था तब 12 का समान हुआ था ज्ञानावरणादि के समान, और तभी से उसका गलितावशेष हुआ था। अब ये मान के उदय सही चढ़ा है तो यहाँ 9 का है वो अन्य के समान हो जाता है और यहाँ से लेकर गलितावशेष हो जाता है।
तो क्रोध का तो पहले से ही वो एक प्रमाण में बना होगा ना, गुणश्रेणी निक्षेप
कहाँ है क्रोध में? अभी क्रोध में गया कहाँ?
अच्छा, इसका उदय ही नहीं है।
आगे पढ़ेंगे। देखो, क्रोध के उदय से चढ़कर पुनः उतरने वाला जीव, पहले वाला जीव लिया, मान के अवस्थित गुणश्रेणी को अपने वेदन करने के काल से विशेष अधिक आयाम वाली निक्षिप्त करता है। ये हमने देखा था जब लोभ वेदक में आया था तो लोभ वेदक से थोड़ा ज्यादा बनाया था, जब माया वेदक शुरू हुआ था तो माया वेदक से कुछ बढ़कर वो गुणश्रेणी बढ़ाई थी उसने, और फिर वो अवस्थित रही थी। फिर मान वेदक शुरू हुआ था उस जीव के लिए,
तब उसकी अवस्थित,
तब मान के वेदक से थोड़ा बड़ा बनाई थी। अब ये जीव जो यहाँ का है
ये मान
उसने अन्य कर्मों के समान बनाई है। यहाँ पर
वहाँ पे क्या होता है, मान माया और लोभ की अवस्थित हुई थी और पीछे गलितावशेष हो गई थी,
परंतु क्रोध की जब बनी थी तो अन्य कर्मों के समान होकर बाद में गलितावशेष। अब ये मान के शुरू होते ही अन्य कर्मों के समान हो जाएगी, यानी बढ़कर बड़ी हो जाएगी और गलितावशेष होगी।
और यहाँ पे भी माया और लोभ की तो अभी अवस्थित होगी और पीछे गलितावशेष।
माया और लोभ की भी इसके समान, मान के समान आयाम वाली हो जाएगी। देखो, क्रोध के उदय से चढ़कर पुनः उतरने वाला जीव मान के अवस्थित गुण श्रेणी को अपने वेदन करने के काल से विशेष अधिक आयाम वाली निक्षिप्त करता है, अपना यानी मान के वेदन काल से, क्योंकि क्रोध का आकर्षण करने पर उसमें 12 कषायों की मिला कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ।
यहाँ पे ये मान की भी अवस्थित बनाई पहले,
वही तो बता रहे हैं।
हाँ।
क्रोध के उदय वाले ने मान की भी अवस्थित बनाई थी।
हाँ।
बराबर।
हाँ, अभी ये मान के उदय के साथ चढ़ा है, उसके मान की पहले अवस्थित होगी और पीछे गलितावशेष हो जाएगी, ऐसे बता रहे हैं।
नहीं, पहले अवस्थित कहाँ होगी, डायरेक्ट गलितावशेष हो जाएगी।
नहीं, जब भी क्रोध का उदय नहीं हुआ था तभी हमने क्या देखा था कि लोभ माया और मान की पहले अवस्थित होती थी और पीछे गलितावशेष हो जाएगी।
हाँ।
तो यहाँ पे मान की पहले अवस्थित गुण श्रेणी को अपने वेदन काल
अवस्थित क्यों कह रहे हैं आप?
यहाँ पे अवस्थित लिखा है ना,
कहाँ लिखा है?
उत्तरण वाले जीव के, जीव मान की अवस्थित गुण श्रेणी को पहली लाइन में लिखा है ना।
कहाँ?
ये
तो
वो क्रोध के उदय से चढ़ने वाले जीव की बात कर रहे हैं, जो क्रोध के उदय से चढ़ा था उसका जब मान की उसने गुण श्रेणी बनाई थी वो अवस्थित थी और अपने वेदन काल से ने मान के वेदन के काल से कुछ अधिक थी। ये उसी का चल रहा है पहले वाले जीव, क्योंकि क्रोध का आकर्षण करने पर, कब किया आकर्षण? जब क्रोध वेदक काल शुरू हुआ था तब, तो क्रोध का आकर्षण करने पर उसमें 12 कषायों की गलित शेष आयाम रूप से ज्ञानावरणादि कर्मों के सदृश प्रमाण वाली गुणश्रेणी की रचना देखी जाती है। यानी जब क्रोध वेदक शुरू हुआ था तब जाके 12 कषायों की गुणश्रेणी ज्ञानावरण के समान बनाई थी, परंतु अब ये पहले वाले जीव की जो हम पढ़ चुके उसकी बात फिर दोबारा बताएं। परंतु प्रकृत में मान के उदय से चढ़कर पुनः उतरने वाला जीव तीन प्रकार के मान का आकर्षण करने के अनंतर ही 9 ही कषायों के ज्ञानावरणादि कर्मों के गुणश्रेणी निक्षेप के सदृश आयाम वाले गलित शेष गुणश्रेणी निक्षेप को करता हुआ अंतर को भरता है। क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले ने जब क्रोध का उदय हुआ था तभी जाके अंतर भरा था।
अभी यहाँ पे
मान के उदय से ही चढ़ने वाला मान का उदय शुरू होते ही 9 कषायों की गुणश्रेणी अन्य के समान करेगा, वो गलिता शेष होगी और उसी समय अंतर को भी करेगा, पूर्ण कर देगा, अंतर को भरता है। इस प्रकार यह नाना पर यहाँ पर नानापन यहाँ पर जानना चाहिए। हाँ, जिस ये अभी नियम बता रहे, जिस कषाय के उदय से श्रेणी पर आरोहण करता है उस कषाय का अपकर्षण करने पर अंतर भरना और उदयावली के बाहर ज्ञानावरणादि कर्मों के समान गलित शेष गुणश्रेणी निक्षेप इन दोनों को आरंभ करता है। यही सूत्र का भावार्थ। अभी तो मान की बात की, हरेक में यही रूल लागू होगा, माया में, लोभ में, सब जगह। कोहे ना, आगे पढ़ना है क्या? बड़ा है, यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी मस्तकनो सदा देत हो। नितिन भाई,
नमो आयतानं नमो सिद्धानं नमो आयज्ञानं नमो उच्चारणं नमो लोयसं नमो आयतानं नमो सिद्धानं नमो आयज्ञानं नमो उच्चारणं नमो लोयसं नमो नमो आयतानं नमो सिद्धानं नमो आयज्ञानं नमो उच्चारणं नमो लोयसं।